हेलो हाय नमस्कार, वक्त हो चला है जागरण खबरनामा सुनने का। चलिए शुरुआत करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट बोला, भारत में हेट क्राइम की कोई वजह नहीं, हेट स्पीच को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कस्टडी में महिला का वर्जिनिटी टेस्ट असंवैधानिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा जेल में भी मौलिक आत्मसम्मान बनाए रखना जरूरी। श्रद्धा मर्डर केस में एक और नया खुलासा, आफताब ने श्रद्धा का चेहरा बर्नर से जलाकर बिगाड़ा था। हल्द्वानी में 4000 घर और मंदिर मस्जिद फिलहाल नहीं टूटेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 हफ्ते तक नहीं होगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। तुर्की के 10 राज्यों में 3 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई गई, दोनों देशों में अब तक 5261 मौतें। अब फोन पे से विदेशों में भी कर सकेंगे पेमेंट, ऐप में UPI इंटरनेशनल एक्टिवेट करना होगा। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में एडमिशन के लिए 8 फरवरी तक करें रजिस्ट्रेशन, 29 अप्रैल को होगी एग्जाम। कियारा सिद्धार्थ की हुई शादी, बावड़ी में लिए फेरे, बारात में करण जौहर शाहिद कपूर ने किया डांस। 4 से 26 मार्च के बीच होगा वुमेन्स प्रीमियर लीग, 13 फरवरी को होगा प्लेयर्स का ऑक्शन। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हेट स्पीच और हेट क्राइम को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम को कोई जगह नहीं है। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि देश में लगातार हेट स्पीच के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साल 2021 में नोएडा में 62 साल के काजिम अहमद शेरवानी हेट क्राइम का शिकार हो गए थे। इसी मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक या पुलिस कस्टडी में बंद महिला का वर्जिनिटी टेस्ट करना संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने यह टिप्पणी मंगलवार को सिस्टर सैफी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका 2009 में दायर की गई थी। सिस्टर सैफी को 1992 में एक नन सिस्टर अभ्या की हत्या का आरोपी ठहराया गया था। सिस्टर अभ्या 27 मार्च 1992 को 18 साल की उम्र में केरल के कोटायम के सेंट पीएस एक्स कॉन्वेंट हॉस्टल में कुएं में मृत पाई गई थी। उनकी हत्या के आरोप में फादर कोट्टूर और सिस्टर सैफी को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दिसंबर 2020 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि केरल हाईकोर्ट ने इस सजा को सस्पेंड कर दिया था। दिल्ली के मेहरोली में हुए श्रद्धा वॉकर मर्डर केस में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार आफताब पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की हत्या के बाद उसका चेहरा और सिर बिगाड़ने के लिए ब्लो टॉर्च का उपयोग किया था। आफताब ने कबूल किया कि श्रद्धा की अस्थियां जलाने और ग्राइंडिंग मशीन में पीसने का उसका पिछला खुलासा पुलिस को गुमराह करने के लिए था। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेल प्रशासन के दावे वाली जमीन से कब्जादारियों को हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। उत्तराखंड सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का समाधान खोजने के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि हल्द्वानी के अतिक्रमण 8 हफ्ते तक नहीं हटाए जाएंगे। मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। मामला जस्टिस एस के कौल, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में था। इसके पहले भी 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड हाई कोर्ट के अतिक्रमण फैसले पर रोक लगा दी थी। तुर्की और सीरिया में सोमवार सुबह 4 बजे आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 5261 हो गई है, हजारों लोग अभी भी लापता हैं। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोआन ने 10 राज्यों में 3 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दी है। ये इलाके भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अर्दोआन ने बताया कि तुर्की में 70 देशों में मदद भेजने का ऐलान किया है। इधर भारत ने भी तुर्की को मदद भेजी है। इंडियन एयरफोर्स का C-17 विमान 2 NDRF टीमों, डॉक्टरों और राहत सामग्री के साथ वहां पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुर्की के हालात पर चिंता जाहिर की है। मोदी मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने कहा, आज तुर्की जिस हालात से गुजर रहा है उसे मैं समझ सकता हूं। 2001 में भुज में जब भूकंप आया था तब मैं मुख्यमंत्री था। मुझे पता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या दिक्कतें आती हैं। भुज में आए भूकंप में 16,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। घायलों का आंकड़ा 62,000 से ज्यादा था। फिनटेक मेजर फोनपे UPI के जरिए इंटरनेशनल पेमेंट शुरू करने जा रहा है। इसके जरिए भारत के फोनपे यूजर्स विदेश यात्रा के दौरान यूपीआई का उपयोग करके इंटरनेशनल मर्चेंट को पेमेंट कर सकेंगे। फिलहाल इस फीचर में जिन देशों को शामिल किया जाएगा उनमें UAE, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान शामिल हैं। इस सुविधा के लिए फोन पे ऐप में यूपीआई इंटरनेशनल को एक्टिवेट करना होगा। फोन पे ने एक बयान में कहा, यूजर्स सीधे अपने भारतीय बैंक से विदेशी मुद्रा में भुगतान करने में सक्षम होंगे, ठीक वैसे ही जैसे वो अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड के साथ करते हैं। फिनटेक इंडस्ट्री की एक एग्जीक्यूटिव के अनुसार ये कदम फोन पे के बड़े फॉरेक्स मार्केट के एक हिस्से पर कब्जा करने का प्रयास लगता है। ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां पेमेंट्स ऐप के लिए एडिशनल पैसा बनाने का सीधा मौका है। वहीं नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 6वीं कक्षा के लिए आयोजित होने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो कल 8 फरवरी 2023 को बंद हो जाएगी। आवेदन करने के लिए एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर लॉगिन करना होगा। ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार एनवीएस कक्षा 6 परीक्षा 2023 अप्रैल में होगी। ये परीक्षा 29 अप्रैल 2023 को आयोजित की जाएगी। वहीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख बाद में जारी की जाएगी। ऐसे में पेरेंट्स को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डेट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें, जिससे उन्हें सही डेट मालूम हो सके। बॉलीवुड जगत की बात करें तो फिल्म एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा मंगलवार को शादी के बंधन में बंध गए। कियारा सिद्धार्थ ने शाम 6:30 बजे के करीब होटल सूर्यगढ़ में बावड़ी में फेरे लिए। शाही शादी के लिए जैसलमेर के सूर्यगढ़ में विदेशी फूलों से मंडप सजाया गया। अब रात में रिसेप्शन होगा। उधर मलाइका अरोड़ा शाम करीब 7 बजे जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंची और रिसेप्शन में शामिल होने आई हैं। इससे पहले बैंड बाजे के साथ बारात निकाली गई। सिद्धार्थ सफेद घोड़ी पर बारात लेकर निकले। इसमें करण जौहर, शाहिद कपूर और परिवार ने डांस किया। सिद्धार्थ के पापा व्हीलचेयर पर बैठे थे। बारात के लिए खास तौर पर दिल्ली से जिया बैंड बुलाया गया। बारात पंजाबी ढोल और संगीत के साथ निकाली गई। बारात पहुंचने पर कियारा सिद्धार्थ की वरमाला हुई। व्हाइट कलर के गुलाबों के फूलों की माला दोनों ने एक दूसरे को पहनाई। खेल जगत की बात करें तो वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला एडिशन 4 मार्च से 26 मार्च तक मुंबई में खेला जाएगा। ब्रेबॉर्न स्टेडियम और डीवाई पाटिल स्टेडियम टूर्नामेंट के सभी मैचों की मेजबानी करेगा। इसमें पहला मैच गुजरात और मुंबई की फ्रेंचाइज के बीच खेला जा सकता है। आईपीएल प्रेसिडेंट ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। 13 फरवरी को WPL के होने वाले ऑक्शन के लिए 409 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें 246 भारतीय खिलाड़ी हैं, जबकि 163 विदेशी खिलाड़ी हैं। इनमें 8 खिलाड़ी एसोसिएट देशों के हैं, वहीं 202 खिलाड़ी कैप्ड खिलाड़ी हैं, जबकि 199 अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं। BCCI के मुताबिक ऑक्शन के लिए 1525 खिलाड़ियों ने लीग के लिए रजिस्टर कराया था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए सुनते रहिए जागरण खबरनामा।